शहर की ओ, जब चले शहर की ओ।
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है
जब चलें शहर की ओर।
और दोस्तों, आज मैं यानी अंजलि जोशी लेकर आई हूँ अपनी महिला मित्रों के लिए खास जानकारी, जिसे जानने के बाद महिलाओं के लिए घर पर तैयार किए हुए उत्पादों को बेचना और भी आसान होगा।
लेकिन अंजलि, इससे पहले एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ।
हाँ बिल्कुल पूछो।
तुम्हें क्या लगता है, एक महिला के लिए छोटे स्तर पर घर में व्यवसाय की शुरुआत करना कितना महत्वपूर्ण है?
अरे उतना ही जितना कि एक पुरुष के लिए घर से बाहर जाकर काम करना जरूरी है। और ऐसे में महिलाएं अगर पैसे कमाने के लिए घर पर ही कोई काम शुरू कर देती हैं, तो इस स्थिति में वो अपने काम और परिवार दोनों को पूरा समय दे सकती हैं।
वो तो है, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि महिलाओं के लिए व्यवसाय करना आसान काम नहीं है।
नरेन, क्यों ना इस बात को हम खुद लोगों से पूछ लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं।
तो ठीक है, बिल्कुल पूछते हैं, लेकिन धारावाहिक शहर की ओर सुनने के बाद।
उससे पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर इक्वल एक्सेस और फोर्ड फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से आइडियो सिंह मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।
और दोस्तों, अगर आप हमसे प्रवास से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें अपना सवाल हमारे फोन नंबर 9197176782 पर SMS कर सकते हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं धारावाहिक शहर की ओर की 45वीं कड़ी।
पिछले एपिसोड में आपने सुना, चंदर और गजेंद्र की अंग्रेजी की क्लासें पूरी हो चुकी हैं, जिसके बाद वो नौकरी के लिए एक बार फिर दयाल पांडे के पास जाते हैं। लेकिन दयाल पांडे इस बार उन्हें तैरना ना आने की बात कहकर फिर से 4,000 रुपए ऐंठ लेता है। इधर मुंबई में राजेश और कविता अपनी शादी की बात से काफी खुश हैं और शादी को लेकर नई योजनाएं बना रहे हैं। गाँव में मधु की परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं और वो पूरी मेहनत से परीक्षा की तैयारी कर रही है। अब सुनते हैं आगे की कहानी।
एक दो तीन।
चंदर,
हाँ,
निकाल लिए ना बैंक से पैसे?
यार पैसे तो मैं निकाल लाया, लेकिन अब बैंक में ज्यादा पैसे नहीं बचे। खर्चा करते हुए पता ही नहीं चलता यार, पैसे कहाँ गायब हो जाते हैं।
मैं तो पहले ही कह रहा था, दयाल पांडे की बातों में मत आ, उसे यूं ही पैसे मत दे।
अरे यार तू भी ना, एक बार हम तैरना सीख जाएं, फिर देखना हम दोनों समंदर की सैर करेंगे।
लेकिन तब जब अगली बार दयाल पांडे कोई नया बहाना बनाकर और पैसे ना बनाए और हमें नौकरी दिला दे।
तू चिंता मत कर गज्जू, अभी मेरे पास उम्मीद की किरण बाकी है। भगवान ना करे अगर किसी मुश्किल में भी पड़ गए तो वो हमारी मदद कर सकती है।
वो कौन
है? मेरे गांव की एक लड़की, यहाँ मुंबई में ही रहती है, जरूरत पड़ी तो उससे बात कर लेंगे।
अच्छा अभी चल, देर हो रही है, खून की जांच करवाने भी जाना है।
हाँ यार, न जाने किन किन सरों पर मेरी किस्मत टिकी है, चलो ये दिन भी बीत ही जाएंगे।
दो सौ, 300, 400 और ये 500। भगवान का शुक्र है इतने पैसे हाथ में है कि दाखिले की फीस किसी से मांगनी नहीं पड़ेगी।
बौजी, अंदर आ जाऊं?
अरे छुटकी आना।
क्या बात है बौजी, बड़े पैसे गिने जा रहे हैं, लगता है जूस की नई पेमेंट आ गई।
हाँ छुटकी, आज ही जूस के पैसे मिले हैं, और पता है अब मैं जल्दी ही जूस के साथ जाम का काम भी शुरू करने जा रही हूँ।
सच बौजी?
हाँ, इसमें बोतलें भी कम लगेंगी और जाम ज्यादा देर तक खराब भी नहीं होता।
फिर तो आपकी कमाई और बढ़ जाएगी ना?
अब थोड़ा बहुत खुद का और घर का खर्चा निकलता रहे, हर समय ये इंतजार ना करना पड़े कि कब तेरे चंदर भैया या हरेंद्र भैया पैसे भेजेंगे, तो फिर इसमें बुराई ही क्या है।
बौजी, बहुत अच्छा लगता होगा ना आपको जब आप खुद पैसे कमाती हो।
छुटकी, औरत को कभी ना कभी अपनी खुशियाँ खुद ही ढूंढनी होती है, और पैसे कमाना भी एक वैसी ही खुशी है। किसी पर बोझ ना होने का एहसास बहुत अच्छा होता है।
बौजी, मैं भी आपके साथ काम करना चाहती हूँ, आपकी मदद करूँगी और पैसे कमाऊंगी।
छुटकी, ये तो बहुत अच्छी बात है, मीरा दीदी के साथ अब तू भी मेरी मदद करेगी तो काम करने वाले दो हाथ और बढ़ जाएंगे, और फिर हमारी कमाई दोगुनी चौगुनी हो जाएगी।
पर बौजी मजा तो तब आता जब औरतों को घर और खेत दोनों पर काम करने के पैसे मिलते, फिर तो हमारी कमाई दुगनी चौगुनी नहीं 8 से 10 गुनी हो जाती,
मजे आ जाते तब तो।
गज्जू पता नहीं क्यों यार मुझे इस खून की जांच से बहुत डर लग रहा है।
घबरा मत चंदर, सब ठीक हो जाएगा। अब जांच ना करवाने से कुछ बदलेगा नहीं, और जांच हो जाएगी तो सावधानियां बरत पाएगा, आगे और नुकसान नहीं होगा।
यार भगवान करे टेस्ट में कोई ऐसी वैसी बात ना निकले, मैं मधु से बिल्कुल आंखें नहीं मिला पाऊंगा। गज्जू तू एक मिनट रुक, मैं माता के दर्शन करके आता हूँ।
ठीक है, लेकिन जल्दी आना। हे भगवान, गलतियां हम करते हैं और फिर उनका हर्जाना भरने का समय आता है तो तेरे द्वार पर खड़े हो जाते हैं।
हे माता रानी, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है और मैं अपनी गलती स्वीकार भी करता हूँ, लेकिन ये मेरी पहली और आखिरी गलती है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैं कभी अपनी पत्नी का विश्वास नहीं तोड़ूंगा, मेरी रक्षा करना माता रानी, मेरी रक्षा करना।
बेटा ये लो प्रसाद।
जी
माता रानी तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करें।
धन्यवाद पुजारी जी, अब तो बस माता रानी का ही आसरा है।
वेटर 2 चाय और 2 बड़ा पाव।
राजेश मेरे लिए चाय नहीं लस्सी प्लीज।
तो एक काम करो भाई, चाय और बड़ा पाव कैंसिल, 2 लस्सी ले आओ।
जी सर।
अच्छा कविता, मैं कुछ सोच रहा था।
किस बारे में?
यही कि क्या हमें अपनी शादी को रजिस्टर करवाना चाहिए या नहीं, तुम्हें क्या लगता है इस बारे में?
मुझे तो लगता है कि गांव से वापस आते ही हमें शादी रजिस्टर करवा लेनी चाहिए।
तो ये तय रहा, गांव से आने के बाद हम तुरंत अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे।
ठीक है। अच्छा राजेश, नौकरी का कुछ इंतजाम हुआ?
1-2 जगह बात चल रही है, मैं चाह रहा हूँ कंपनी ऐसी हो जहाँ दोनों को नौकरी मिल जाए, आना जाना भी साथ रहेगा और तुम हमेशा मेरी नजरों के सामने भी रहोगी। अरे तुम हंस रही हो? मैं सीरियस हूँ। कविता अब तुम्हें खुद से एक पल भी दूर नहीं देख सकता।
ओके बाबा ओके, मगर इतना भी नजर रखना ठीक नहीं, मुझे अपनी आजादी से बहुत प्यार है, मुझे ज्यादा बांधने की कोशिश मत करना, समझे?
तुम्हें तुम्हारी आजादी मुझसे भी ज्यादा पसंद है क्या?
राजेश इन दोनों के बीच मुझे चुनाव करने को मत कहना, मैंने बहुत कुछ खोया है अपनी आजादी को ढूंढते ढूंढते।
अरे मैं तो मजाक कर रहा था कविता, अगर एक साथ नौकरी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैं तो बस सोच रहा था अगर साथ काम करते तो सब कुछ आसान हो जाता।
हाँ अगर ऐसी नौकरी मिल जाती है तो हम एक साथ काम करेंगे, वैसे तुम्हें भी ज्यादा देर में अपनी आँखों से ओझल नहीं कर सकते।
अच्छा जी, तो मैडम मुझ पर नजर रखना चाहती हैं?
बिल्कुल, कहीं किसी ने तुम्हें चुरा लिया तो मेरा तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा ना।
क्या?
हाँ।
मुन्ना।
हाँ बोल रहे, क्या हुआ?
यार उधर सकना यार, परेशानी हो रही है भाई।
क्या बोला रहे तू है? मेरी वजह से तेरे को परेशानी हो रही है?
नहीं यार मैं तो बस।
अरे परेशानी मेरी वजह से नहीं, तुम दोनों की वजह से इधर हम सबको हो रही है, समझा?
मुन्ना भाई मैं तो
बस... अरे क्या, मैं तो 2 दिन को बोला था ना है, 15 दिन हो गए इधर, वैसे अभी कितने दिनों में तुम लोग अपने लिए ठिकाना ढूंढोगे रे है?
हे मुन्ना रे, मुझे तो लगता है इनको अपना ही घोड़ी पसंद आ गया रे।
नहीं यार जग्गू भाई वो...
हे दर्शन अब बोलते क्यों नहीं इनसे?
भाई ऐसा है कि अगर तुम दोनों को ज्यादा परेशानी हो रही है ना तो तुम कहीं और चले जाओ।
दर्शन तू भी?
अरे तो इसमें दर्शन क्या करेगा, जितनी मदद हो सकती थी मैंने की है ना।
ठीक है दर्शन, हम सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे, और जहाँ तक रात की बात है हम बाहर जाकर सो जाते हैं। चल यार गज्जू।
चल यार चल।
हाँ हाँ जाओ जाओ, कम से कम हम लोग चैन से तो सो सकेंगे यार।
चलो यार सोते हैं।
अरे पुलिस
है? पुलिस? ए मुन्ना, ए दर्शन, ए भागो रहे हैं आप वहां से, ए पुलिस पुलिस, अरे मारेगा यार।
अबे भाग, ए मुन्ना भाग।
अरे बाप रे कहाँ जाएं यार,
गज्जू ये सब लोग भाग क्यों रहे हैं यार?
चंदर ये अभी बताने का वक्त नहीं है, चल भाग यहाँ से।
लेकिन हमारा सामान।
अरे सामान को छोड़ यार, चल यहाँ से भाग।
पकड़ रहे रन दोनों को, पकड़ो रे, थामो रे, थामा। अरे कहाँ भाग रहा है, रुक रुक रुक,
छोड़ो मुझे।
भागता किधर है रे?
अरे मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों पकड़ रहा है? चलो।
अरे वो तो थाने में चलकर पता चलेगा तूने क्या किया है और क्या नहीं। इसका बाकी साथी कहाँ ले रे?
हमारा आदमी क्या है सर?
गुड, कई दिनों से लूटपाट करके शरीफ लोगों का नींद हराम करे ला था रे। देखता हूँ अब कैसे बचे ला रे सब। ले चलो इसको।
मुझे और नहीं भागा जाता गज्जू।
हे चंदर, बस थोड़ा और यार, थोड़ा और फरनब।
अरे थमर वो रे, पकड़ रे और पकड़ ला रे।
चंदर भाग यार, पुलिस भाग।
बगिया बगिया बालक भाग, ढूंढ रहा है जो तू जग में, कोई जो पाए तो मन में ही पाए।
और दोस्तों अब समय आ गया है नरेन के उस सवाल का जवाब ढूंढने का जो नरेन ने कार्यक्रम की शुरुआत में मुझसे पूछा था।
बिल्कुल अंजलि, आओ अपने श्रोताओं से जानते हैं कि उन्हें क्या लगता है, क्या सचमुच एक महिला के लिए घर पर बैठकर व्यवसाय करना मुश्किल काम है?
औरतों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए मुश्किल है तो इसलिए है क्योंकि उन्हें मनी प्रॉब्लम भी होती है। दूसरा, इन लोगों को कहीं से किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प नहीं मिलती है।
मेरे हिसाब से तो एक औरत को बिना आदमी के व्यवसाय चलाना मुश्किल है, क्योंकि एक औरत घर में बैठ के दुकान तो कर सकती है, मगर बाहर की मार्केटिंग का काम और माल, जहाँ से माल उठाना, वहाँ की पेमेंट करना, हिसाब करना, थोड़ा औरत घबरा ही जाती है। इसीलिए हर कहीं पर औरत को आदमी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए औरत बिना आदमी के व्यवसाय नहीं कर सकती।
मैं बोल जाना चाहूँ, क्षमता तो सब चीज रहे, बहुत कुछ कन भी चांदी और कितना लोग करना भी छन ना, पर मैं एक आम औरत के हिसाब से जो मतलब मीडियम क्लास की छन, तो बहुत परेशानी होती है सर। अगर सपोर्ट मिलते तो भी कर सकती, तो भी करने चाहिए, क्योंकि तो अंदर भी बहुत सारा गुण छन, क्षमता छन, पर पैसों की कमी, जगह की कमी की वजह से नहीं कर सकनी।
उनके लिए अपना बिजनेस चलाना मुश्किल है, क्योंकि वो एक तो पहली बात की उनको में ज्यादा बिजनेस के प्रति जज्बा नहीं होता, और दूसरी बात मार्केटिंग भी वो ढंग से नहीं कर पाएंगी। अगर मार्केटिंग वो करती भी है तो अपने फैमिली को नहीं देख पाएंगे ढंग से, और मतलब बहुत सारी उनको दिक्कतें झेलनी पड़ जाएगी।
नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी एक खुद का कॉस्मेटिक शॉप चलाती हूँ, जिसे चलाकर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो सहनशीलता और वो शक्ति है, मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी रह सकती हूँ, ताकि ज़िंदगी में मुझे किसी के आगे झुकना ना पड़े। आज की दुनिया में आधे से ज़्यादा औरतें या तो खुद का व्यवसाय चलाती हैं या फिर जॉब करती हैं, तो मेरे हिसाब से हर उस महिला के अंदर वो जज्बा और वो जुनून होता है, जिसके बल पर वो अपना भविष्य उज्ज्वल कर सकती हैं।
ना कटूंगी ना जलूंगी, ना मिटूंगी ना मरूंगी, मैं थी मैं हूँ मैं रहूंगी, मैं थी मैं हूँ मैं रहूंगी।
तो दोस्तों ये थे हमारे श्रोताओं के जवाब, जिन्हें जानने की कोशिश की हमारे सामुदायिक संवाददाताओं ने, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं।
वैसे नरेन, जिन्होंने अपने जवाब में ये कहा कि एक महिला घर बैठकर सफलता पूर्वक व्यवसाय नहीं कर सकती है, उनके लिए मेरे पास एक ऐसा उदाहरण है जिसे जानने के बाद उनकी राय यकीनन बदल जाएगी।
मतलब
आज हम अपने श्रोताओं को मिलवाएंगे एक ऐसी महिला से जो न सिर्फ व्यवसाय कर रही है बल्कि उसे सफलता पूर्वक चला भी रही है।
तो आइए मिलते हैं हम अपने आज के मेहमान से।
दोस्तों आज हमारे साथ एक ऐसी महिला जिन्होंने काफ़ी कठिनाइयों के बाद कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया और आज सफलतापूर्वक उस व्यवसाय को चला रही हैं। आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए।
मेरा नाम अनीता है, मैं जयपुर में रहती हूँ, मकान नंबर 442 है। मैं घर में ही कपड़े सिलती हूँ, पे लगभग कार्य 5 साल से कर रही हूँ।
क्या आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि सफलता के इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा?
जब मैं दिल्ली में आई तो तब मेरे पति बहुत परेशान रहते थे। मैंने अपने पति से कहा मुझे सिलाई सिखा दो, मैं घर में खाली समय पर कपड़े सिल लूंगी। तब जाकर वो माने, फिर मैंने सिलाई सीखना शुरू कर दिया। मैं दिन रात एक करके मैंने सिलाई सीखने की कोशिश की। लास्ट के 2 महीने मुझे थे, मैं माँ बन गई, जिसके कारण मैं अब सिलाई सेंटर जाना छोड़ दिया। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी, मैं न्यूज़पेपर में और जगह जगह से डिजाइन देखकर फिर बनाती थी। सिलाई टेलर 100 रुपये सिलाई लेते थे तो मैं 70 रुपये ही लेती थी। इस तरह मैंने और मेरे पति ने मिलकर कमाना शुरू किया। घर में रहकर ही मैंने इतना कमा लेती थी कि आज मैं 35 गज का मकान लिया है। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और मैं एक अच्छी माँ की तरह उनकी देखभाल करती हूँ और घर में खर्चा भी निकालती हूँ।
बाकी अनीता जी, आपकी इस प्रेरणादायक कहानी को सुनकर हमारे श्रोताओं को भी जीवन में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिला होगा। आप अंत में हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं सभी श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपको काम करने की इच्छा है और दुनिया की बेड़ियाँ आपके पाँव में पड़ी हैं तो उन्हें तोड़ दीजिए और पूरी मेहनत और लगन के से अपना व्यवसाय कीजिए। लेकिन उनका विश्वास भी मत तोड़े कि उन्हें आप पर गर्व होने की वजह शर्मिंदगी होगी।
दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा।
अच्छा नरेन, जो महिलाएं घर पर रहकर ही कोई उत्पाद बनाती हैं, उसे बेचने में तो उन्हें काफी दिक्कत आती होगी ना?
अरे अंजलि, आज हम इसी बारे में तो बात करने वाले हैं अपने अगले सेगमेंट काम की बात में। दोस्तों, महिलाएं घर पर अचार, पापड़, जैम और जेली जैसे घरेलू उत्पाद बनाकर अच्छे पैसे कमा सकती हैं।
इतना ही नहीं, महिलाएं अपने हाथ के हुनर यानी सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग आदि को भी धन कमाने का अच्छा जरिया बना सकती हैं।
लेकिन कई बार महिलाओं के सामने सवाल आ खड़ा होता है उनके द्वारा निर्मित उत्पादों को बेचने का।
इसके लिए महिलाओं को शुरुआत करनी चाहिए अपने आसपास से। उन्हें सबसे पहले अपने द्वारा तैयार उत्पाद को अपने आस पड़ोस और नजदीकी इलाकों में बेचने का प्रयास करना चाहिए। अब इस काम को चाहे तो कुछ महिलाएं मिलकर भी कर सकती हैं।
वही महिलाएं घर घर जाकर अपने उत्पाद की जानकारी लोगों को दे सकती हैं और उसकी खासियत बताते हुए लोगों को बेच सकती हैं।
इसके अलावा महिलाएं अगर चाहें तो आसपास के दुकानदारों से अपने उत्पाद को बेचने के लिए भी कह सकती हैं।
लेकिन ऐसे में हो सकता है कि दुकानदार इसके बदले आपसे कुछ पैसे ले या फिर उत्पाद की बिक्री से होने वाले लाभ में से कुछ अंश की मांग करे।
लेकिन फिर भी अपने उत्पाद को लोगों की जानकारी में लाने का ये बहुत अच्छा तरीका है,
क्योंकि जितना आपका उत्पाद लोगों की जानकारी में आएगा उतनी ही उत्पाद की बिक्री होने की संभावना भी बढ़ जाएगी और होने वाला लाभ भी उसी आधार पर बढ़ेगा।
तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी काम की बात? वैसे अगर आप इस संबंध में या किसी और विषय में किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप हमें अपना सवाल हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं।
और इसके लिए नंबर तो आपको याद ही होगा, अगर नहीं भी याद है तो एक बार फिर लिख लीजिए। नंबर है 9197176782223।
मिलनू मिलनू मरे मन बस के जानू, मिलनू मिलनू मरे मन।
सभ्यों दगड़ी छप हुए जानो बोलनो बचानो सभ्यों दगड़ी छप हुए जानो कख बिटी सीखी होलू तिन कख बिटी सीखी होलू तिन कख बिटी न हे गैलिया सीखी होलू तिन कख बिटी न हे गैलिया सीखी होलू तिन
और दोस्तों अब समय हो चुका है आपकी चिट्ठी का।
जी हाँ, आपके खट्टे मीठे अनुभवों से भरी वो चिट्ठियाँ जिनमें से हमें चुनना है आज का लकी विजेता।
तो अंजलि, कौन है वो भाग्यशाली विजेता जिन्होंने अपने खट्टे मीठे अनुभवों के जरिए जीत लिया है आज का इनाम?
नरेन, आज के विजेता हैं रुद्रप्रयाग के विवेक कुमार। नरेन, विवेक कुमार जी लिखते हैं कि मैं सन 2004 में 9वीं कक्षा की पढ़ाई बीच में छोड़कर घर से भागकर देहरादून आ गया। देहरादून जाने का सिर्फ किराया ही मेरी जेब में था। सोचा था कि वहां जाकर कोई काम करके पैसे मिल जाएंगे। जब मैं देहरादून के बस अड्डे पर उतरा, मुझे जोर की भूख लग गई। मैंने जेब में देखा तो सिर्फ 20 रुपए ही थे। सड़क के किनारे बैठकर ये सोचता रहा कि 20 रुपए में क्या खाऊं और क्या बचाऊं। सोचते सोचते रोने लगा। मुझे रोता देखकर एक दुकानदार मेरे पास आया और मुझसे पूछताछ करने लगा। मैंने अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। उन्होंने मुझे अपनी ही दुकान पर हेल्पर के काम पर लगा दिया, जिसकी पगार 1000 रुपए तय हुई। जैसे तैसे 2-3 महीने गुजर गए। फिर जब मैंने मालिक से हिसाब के लिए कहा तो उन्होंने मेरी खूब पिटाई की, फिर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। पूरी रात खुले आसमान के नीचे ही बैठा रहा। जब सुबह हुई तो देखा कि कुछ नेपाली ईंटें लेकर जा रहे थे। मैं भी उनके साथ काम पर लग गया। उन्होंने मुझे 300 रुपए दिए। फिर मैं घर आ गया और मैंने ध्यान लगाकर पढ़ाई की। आज मैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा हूँ।
विवेक कुमार जी, दुख हुआ ये जानकर कि आपका शहर का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा। बहरहाल, आपकी इस चिट्ठी के लिए हम आपको दे रहे हैं एक सुंदर सा ट्रैवल बैग। और दोस्तों, विवेक जी की तरह आप भी ऐसा ही आकर्षक इनाम जीत सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों को चिट्ठियों के जरिए हमें भेजते रहिए।
आप हमें अपनी चिट्ठियाँ इस पते पर भेज सकते हैं, कार्यक्रम जब चले शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका इनक्लेव पार्ट 3 सेक्टर 35 फरीदाबाद हरियाणा 121003। नरेन, हमारे प्रवासी दोस्त भले ही अपने परिवार से दूर रह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने परिवार को याद नहीं करते।
सही कहा अंजलि, और इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है उन संदेशों से जिनमें छिपा होता है हमारे प्रवासी दोस्तों का अपने करीबियों के प्रति स्नेह और प्यार।
तो आइए सुनते हैं ऐसे ही कुछ संदेश।
मैं चंदा चे अब मैं चेता कने बोनू को कि मैं ते दगड़े जो बोनू बम्बई बिटी ना और मैं जो मसूरी बहुत याद चौनी मैं तो घूमन फिरना बहुत अच्छा लग दू मैं तो बम्बई बहुत मजबूरी से जो रहनू मैं मसूरी ओन चाहू तक मैं बहुत बड़ी शांति मिलती जब मैं हर काम करता हूँ तीन याद करता हूँ चेते सनी और गोड़ा से पाल गोड़ू से करना भी बहुत मन कर दू मेरु पर मेरी इच्छा छ पक्की कन इच्छा तनी रहेगी मेरी।
मेरा नाम सोनी राजपूत है। मैं अपने मामा मामी जी के बारे में संदेश भेजना चाहती हूँ। मामा मामी जी नमस्ते। मामा जी हमारी पढ़ाई ठीक चल रही है और वह परीक्षा नज़दीक आ गई है। मामा जी आप हमें लेने बम्बई आना फिर हम गांव जाएंगे नाना नानी के पास।
मैं रोहन रावत बोल रहा हूँ। मैं यह संदेश अपनी दादी जी को ग्राम ग्रीन तल्ला में देना चाहता हूँ। दादी जी नमस्ते। हम यहाँ ठीक है और आप कैसी है? दादी मेरे पेपर हो जाएंगे तो मैं मम्मी पापा भाई सब गांव आ जाएंगे। थैंक यू।
मैं ज्यादातर मैं प्रवासी सभी भाई बहनों बहनों को देना चाहता हूँ मतलब कि आज का जब मैं गांव जाता हूँ मतलब तो गांव में जब जाता हूँ तो मतलब काफी अच्छी प्रगति बढ़ लो चलना चाहिए मतलब और मैं उतने शुभकामना देना चाहता हूँ कि मतलब आगे भी ये तरह से ये पथ पर आगे बढ़ूँ और एक दिन मतलब अपना जो उत्तरांचल जो वो आगे आलू मतलब
रस्ते में प्यारा सा गाँव
तो ये थे आज के संदेश। और अगर आप भी अपना कोई संदेश भेजना चाहते हैं तो हमें अपना नाम और पता हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं। हम आपके संदेशों को रिकॉर्ड करके अपने कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे।
और दोस्तों जाने से पहले हम सुनाना चाहते हैं एक संदेश जो हमें भेजा है रमेश सकलानी जी ने उत्तराखंड से। रमेश जी अपने भाई को संदेश देना चाहते हैं कि वह अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे और पैसे के लालच में ज्यादा ओवरटाइम न करे और हो सके तो जल्द ही घर आ जाए।
रमेश जी उम्मीद करते हैं आपके भाई हमारा प्रोग्राम सुन रहे होंगे और आपकी बात पर गौर करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं।
लेकिन जाने से पहले हम आपको एक बार फिर बता दें कि अगर आप हमें SMS भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा नंबर है 9197176723।
इसके अलावा अगर आपके पास प्रवास से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी है तो आप हमें वो जानकारी चिट्ठी अथवा ईमेल के जरिए भेज सकते हैं।
और हाँ, हमें अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों के साथ चिट्ठियाँ जरूर लिखते रहिएगा और ईमेल भी करते रहिएगा। हमारा ईमेल आईडी और पता आप एक बार फिर नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com यानी के shaherkior@gmail.com।
और पता है कार्यक्रम जब चले शहर की ओर 177 बेसमेंट अशोका इनक्लेव पार्ट 3 सेक्टर 35 फरीदाबाद हरियाणा 121003।
और श्रोताओं आपसे एक और जरूरी बात, आप मिलजुल कर अपना एक प्रवासी क्लब तैयार कीजिए और अगर आप पहले से ही किसी प्रवासी क्लब के सदस्य हैं तो उसकी गतिविधियों की जानकारियों को भी आप हमें चिट्ठियों के जरिए भेज सकते हैं।
इसी के साथ हम अपने सहयोगियों हेवलवाणी चंबा और मंदाकिनी की आवाज़ भणज का भी धन्यवाद करना चाहेंगे।
और दोस्तों अब आप जानते ही हैं कि वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
नमस्कार।
जब चले शहर की ओर।